नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 19 से प्रारंभ करेंगे। अथ अपराह्ने भगवान कृष्णः संकर्षण अन्वितः मथुरां प्राविशत् गोपैः दिदृक्षुः परिवारितः। अथ अपराह्ने भगवान कृष्णः संकर्षणान्वितः मथुरां प्राविशद् गोपैः दिदृक्षुः परिवारितः। अथ अपराह्ने भगवान कृष्णः संकर्षणान्वितः मथुरां प्राविशद् गोपैः दिदृक्षुः परिवारितः। ददर्श तां पातुकतुङ्ग गोपुरम् श्री मथुरा जी का वर्णन हो रहा है, इसलिए श्लोक का बहुत महत्व है। ददर्श तां स्फाटिकतुंग गोपुरा द्वारां बृहद हेम कपाट तोरणां ताम्रार कोष्ठां परिखा दुरासदां उद्यान रम्योपवनोपशोभितां। ये प्रिंट गलत है, मुख्य लाइन है उसको शुरू से चलना चाहिए, उल्टा कर दिए। सौवर्ण श्रृंगात कहर में निष्कुट श्रेणी सभावीर भवने रूपस्कृता वैदुर्ज वज्रमल नील विद्रुमही मुक्ता हरिद्भिः बलभिः सुवेदिषु जुष्टे सुजाला मुखरन्ध्र कुट्टिनेश आविष्ट पारावत बर्हिनादितान् संसिक्त रथ्यापण मार्ग चत्वरां प्रकीर्ण माल्यां कुरलाज तंडुलां आपूर्ण कुंभै दधि चंदनोक्षितै प्रसून दीपावलि सपल्लवये सवृंद रंभाक्रम कहि सकेतुभिः स्वलंकृत द्वार गृहां सपत्ति कहि। चार श्लोकों में मथुरा जी का वर्णन हुआ, अब श्री भगवान के प्रवेश का वर्णन हो रहा है। वृतौ प्रवेश का और मथुरा की स्त्रियों के द्वारा भगवान के प्रति प्रेम की बाढ़। वृतौ वयस्यै नरदेव वर्त्मना तांसं प्रविष्टौ वसुदेव नन्दनौ वृतौ वयस्यैर्नरदेव वर्त्मना द्रष्टुं समीयुः त्वरितः पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुः निपोत्सुकः काश्चिद् विपर्य धृतवस्त्रभूषणा विस्मृत्य चैकं जुगले स्वथा परः कृतैकपत्र श्रवणैकनूपुरा नत्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम् अश्नन्ते एकास्तदपाश्च सोत्सवा अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जनः स्वपङ्क्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वनम् प्रपाय यन्तोर्भमपोह्य मातरः मनांसि तासामरविन्दलोचनः प्रगौभलीला हसितावलोकनैः जहारमत्त दुर्गेन्द्रविक्रम दृशां ददत् श्रीरमणात्मनोत्सवम् दृष्ट्वा मुहुर्श्रुतमनो द्रुतचेतसस्तम् तत्प्रेक्षणस्मितसुधोक्षणलब्धमानः आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दृशात्मलब्धम् हृष्यात्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाधि प्रासादशिखरारूढः विद्युत्फुल्लमुखाम्बुजः अभ्यवर्षं सौमनस्य हि प्रमदा बलकेशवौ दध्यक्षतैः सोदपात्रैः सद्गन्धरव्युपायनैः तावानर्चुः प्रमुदितः तत्र तत्र द्विजातयः ऊचुः पौरा अहो गोप्यः तपः किमचरन्मः या ह्येतावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवौ अथ जब श्री अक्रूर जी मथुरा में चले गए तब अपराह्ने दोपहर के बाद भगवान कृष्ण संकर्षणान्वित श्री बलराम जी के साथ क्या रखे किसका है बार बार मना किया जा रहा है ना। श्री बलराम जी के साथ मथुराम मथुरा में प्राण विषाद प्रवेश किए, गोपही गोपों के साथ दिदृक्षुः देखने की लालसा से, श्री मथुरा जी को देखने की लालसा से परिवारितः घिरे हुए, तो श्री सुखदेव गोस्वामी अब वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार श्री मथुरा जी में प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा जी से जाने की लीला भी श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े ही प्रेम से कहे। गए तो पिताजी की गोद में गए जन्म के बाद, और लगभग 11 वर्ष के बाद, 10.5-11 वर्ष के बाद ब्रज से लौटे हैं अपनी राजधानी मथुरा में। अथ शब्द मंगल के लिए भी प्रयुक्त होता है। अथ का अर्थ बहुत मंगल में प्रसंग है कि श्री भगवान मथुरा जी में प्रवेश कर रहे हैं। अथ शब्द बड़ा मंगलमय है, ओम की तरह, जैसे किसी मंत्र में ओम शब्द जुड़ता है तो किसी प्रकरण में अथ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अथवा अथ का यहां अर्थ है श्री अक्रूर जी के मथुरा प्रवेश करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ गोपों से घिरे हुए मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। अथ अक्रूरस्य पुरी प्रवेशानन्तरम् अपराह्ने संकर्षणान्वितः भगवान कृष्णः गोपैः वयस्यैः परिवारितः परिवृतः वेष्टितः श्रीदामादिभिः श्री दामाद भी परिवारित तांबुलार्पकादि कादि परिवार तया सेवित इत्यर्थ। जदवा परितः वारितः परम स्निग्धेन श्री बलदेवेन पूर्वम श्री बलवेन्द्रेण बलवेन्द्रेणैव वा विविध संकया आवरण रूपेण वेष्टनम कारितम्। तो श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है तथा परम सुंदर और सबके आकर्षण के विषय, श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। तो श्री बलराम जी तो शुरू से साथ ही हैं, तो यहां पर फिर यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि श्री बलराम जी के साथ। इसका अर्थ है कि श्री मथुरा में आने पर श्री बलराम जी अब कृष्ण के बिल्कुल निकट हो गए, साथ बिल्कुल चलेंगे। उस समय भी साथ ही थे, रथ पर थे, साथ में अक्रूर जी को दर्शन दिए बलराम जी के साथ और मथुरा आए भी साथ में, पर पुनः श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं साथ में प्रवेश कर रहे थे। श्री अक्रूर जी को श्री भगवान ने भेज दिया और अब सबके साथ हो लिए। संकर्षण अन्वित, संकर्षण अन्वित और गोप ही परिवार रूप, गोपों के द्वारा घिरे हुए श्री कृष्ण प्रवेश किए। परिवारित का अर्थ है कि श्री दामा आदि भक्तजन सखागण श्री कृष्ण को कोई कोई पान देते थे खाने के लिए, बीच बीच में कुछ खिलाते रहते थे, कई प्रकार से सेवा करते हुए चल रहे थे। अथवा परिवारित का एक अर्थ है परित वारित, वारण मतलब निवारण, सब तरह से कई शंकाओं से श्री बलराम जी, और इसके पहले उपवन में जो ठहरे थे तो पुरी में चलने के पहले, मथुरापुरी में चलने के पहले श्री नंद बाबा ने कहा, तुम जा रहे हो मथुरा में तो ये काम मत करना, बलराम के साथ हमेशा चलना, परिनिवारण किए, वारण रिस्ट्रिक्शन इसको कहेंगे। श्री बलवेंद्र, श्री नंद बाबा बड़े स्नेह से मना किए कुछ काम के लिए, ऐसे ही जैसे ब्रज में किसी के घर में चले जाते थे माखन चुराते थे, ऐसे किसी घर में मत जाना, रोड पर सीधे चलना, रोड पर तो ये सब निवारण किए, हमेशा श्री बलराम के साथ रहना, अकेले मत जाना। और इसके बाद श्री बलराम जी मना किए, चलने लगे तो नंद बाबा के द्वारा इनको शक्ति मिली, बलराम जी को ये भी कंट्रोल किए कृष्ण को, सबके साथ चलना है और ब्रज जैसे यहां नहीं देखना है, सब तरफ थोड़ा सभ्य बन करके चलो नगर में प्रवेश कर रहे हैं, ब्रज में तो चलते हैं तो कहीं भी देखते हैं, किसी पर भी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन यहां पारिवारिक है, यहां रिस्ट्रिक्शन हुआ, ऐसे ऐसे चलना है, ढंग से चलना है, कोई ये ना कहे कि गांव का एक वैद्य कूफ आया है लोग तो ये सब निवारण था। इस तरह से श्री कृष्ण चले, तो श्री सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण की देखी हुई मथुरापुरी का वर्णन कर रहे हैं, श्री कृष्ण जैसे जैसे देख रहे हैं मथुरा जी को वैसे वैसे श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जैसे जैसे दृष्टि जा रही है श्री कृष्ण की। और एक विशेषण दिए भगवान कृष्ण का कि दिदृक्षु, देखने के अभिलाषी श्री कृष्ण प्रवेश किए मथुरा में, बहुत दिनों से लालसा होती थी मथुरा को देखने की, बीच बीच में चर्चा होती थी, आज आए हैं मथुरा जी ने अपने सखा के साथ, सखाओं के साथ श्री बलराम जी के साथ देखना चाहते हैं, प्रवेश किए। जैसे जैसे श्री कृष्ण देख रहे हैं वैसे वैसे वर्णन करते हैं।
ददर्शताम् स्फाटिकतुङ्ग गोपुर द्वाराम् बृहद हेम कपाट तोरणाम् ताम्रारकोष्ठाम् परिखा दुरासदाम् उद्यान रम्योपवनोपशोभिताम्।
श्रीकृष्ण दृष्टाम् पुरीम् अनुवर्णयति चतुर्भिः, चार श्लोकों में श्री मथुरा जी का वर्णन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण जैसे जैसे दृष्टिपात कर रहे हैं भवन पर, रोड पर और सब पर, वैसे वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। ताम ददर्श, श्री मधुपुरीम ददर्श, ददर्श ताम स्फाटिकतुंग गोपुर द्वारम, स्फाटिकानी स्फटिक मयानी तुंगानी उच्चेतानी गोपुराणी पुरद्वाराणी अन्यानी च द्वाराणी अर्थात गृह द्वाराणी जस्याम सा ताम मथुरा। सबसे पहले श्री कृष्ण देख रहे हैं गोपों के साथ, देख रहे हैं श्री बलराम जी के साथ, स्फटिक मणि की संगमरमर की बनी हुई दीवार है, विशेष करके गोपुर और द्वार, गोपुर कहते हैं पूर्व द्वार को, नगर द्वार को, पहले नगरों के द्वार, नगर में प्रवेश करने के द्वार होते थे, बहुत बड़ा प्राचीर होता था, चहरदीवारी और चहरदीवारी में चारों तरफ पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से प्रवेश करने के द्वार होते थे, जिनको गोपुर कहा जाता था, वह ऊंचे होते थे और उसके ऊपर, उस द्वार के ऊपर भी रहने के लिए बनाया जाता था, जहां से सुरक्षा की जा सके उस नगर की। बहुत से अस्त्र शस्त्र रख करके सुरक्षा की जाती थी, शत्रुओं के आक्रमण का भय रहता ही था, तो इसको गोपुर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री संकर्षण के साथ देखे पुरद द्वाराणी, नगर के द्वार, बहुत से द्वार। आज भी दिल्ली में हम लोग सुनते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं, बहुत से द्वार थे। जैसे इधर जयपुर की तरफ जाने के लिए अजमेरी गेट, आज भी वो स्थान है अजमेरी गेट का, अजमेर की तरफ निकलने के लिए। इधर लाहौरी गेट, लाहौर जाने के लिए। तो श्री कृष्ण ने क्या क्या देखे इसका वर्णन कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न उठेगा कि उन्होंने पूरे द्वार देखा तो पहले एक तरफ के नगर के द्वार को देखा होगा ना, तो पूरे द्वाराणी सभी द्वारों का वर्णन सुखदेव जी कैसे कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण घूम घूम करके सब देखे, क्या क्या देखे इसका वर्णन कर रहे हैं। तो उन्होंने नगर द्वारों को देखा, पूरा द्वाराणी और गृह द्वाराणी चौ, मथुरा नगर के घर के दरवाजों को देखा ध्यान से और नगर के दरवाजों को देखा। तो मैं कह रहा था जैसे दिल्ली में आज भी वो सब नाम है, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, और इधर मथुरा जाने के लिए भी गेट होगा ही, दिल्ली से दक्षिण जाने के लिए। अब तो कोई गेट सेट है नहीं, क्या सुरक्षा होगी। अरे सुरक्षा क्या होगी, जब संसद पर आक्रमण होता है तो सुरक्षा क्या होगी। इतना असुरक्षित सारा जीवन है, अनुभवहीन लोगों का ये सब तमाशा है। वास्तव में पहले नगरों की रचनाएं होती थी, कोई शत्रु के लिए प्रवेश करना कठिन था, प्राचीर के बाहर खाई बनाई जाती थी जिसमें जल भरा रहता, उसको लांघना बड़ा कठिन था, उसको लांघे तो गेट से पार करना पड़ता। श्री मधुपुरी इस तरह बहुत से नगर द्वार से युक्त थी, उसको भगवान ने देखा और उसको श्री सुखदेव को समझ कहते उत्तुंग गोपुर द्वाराणी, ऊंचे ऊंचे गोपुर, ऊंचे ऊंचे फाटक गेट देखा, और गृह द्वाराणी चौ, और विविध घरों के द्वार देखे। तो द्वार बने हुए थे स्फटिक मणि के, स्फटिक मणि का अर्थ केवल आजकल का ये पत्थर मार्बल ही नहीं होता है, स्पेशल स्फटिक मणि। उसको स्फटिक इसलिए कहते हैं कि उसमें से साफ, उसमें मनुष्य अपना प्रतिबिंब देख सकता है स्पष्ट उज्ज्वल। और बृहद हेम कपाट तोरणान, और मथुरा जी ने सोने के कपाट और तोरण लगे हुए, बृहद हेम कपाट तोरण, बहुत बड़े बड़े कपाट लगे हुए थे और कपाट सोने से जड़े हुए थे। जहां घर के द्वार में, नगर के द्वार में सोना लगा हुआ है, बृहद और भी कपाट, गोपुर कपाट तो बृहद होंगे ही, और घर के कपाट और तोरण, तोरण मतलब चौकट, ये सब सोने के बने हुए थे। आजकल तो ईंट से चौकट जोड़ दिया जाए वही काफी होता है। अब तो लकड़ी भी खत्म हो गया, अब आयरन रह गया और आयरन को भी डेढ़ दुगना महंगा कर दिया गया, लोहा भी काफी महंगा है। तो भगवान ने देखा, सब भगवान श्री कृष्ण के नजरों से देखी हुई श्री मथुरा जी का वर्णन कर किया जा रहा है। घर का वर्णन किया गया, गृह द्वार का, नगर द्वार का और कपाट का, तोरण का। तोरण चौकट को और चौकट के ऊपर दरवाजे की तरफ से निकला होता है, उसको तोरण कहते हैं। तो सबके विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बृहद हेम कपाट तोरणम। बृहद बड़े बड़े कपाट लगे हुए थे और सोने के कपाट और सोने के तोरण। बृहंती हेम मयानी कपाटानी तोरणानी च जस्यम ताम तांद्रार कोष्ठाम। और जहां तहां कोष्ठ बने हुए थे, कोष्ठ का अर्थ होता है कोठा या कोठिली, कोठिला। कोठा बने हुए थे और कोठिला जानते हैं अन्न रखने के लिए बनता है। तो ताम्र के और आर के, आर मतलब पीतल और ताम्र मतलब तांबा, तांबे के शब्द, कोठा बना हुआ था तो तांबा से और पीतल से, और पीतल और तांबे के बड़े बड़े कोठिला बने हुए थे कोष्ठ, कैप रखने के लिए। उसमें गेहूं, चना, चावल आदि रखने के लिए। पहले के लोग घर में इस तरह से अन्न रखते थे, ऐसा नहीं कि 2.5 किलो भी जरूरत पड़े तो बाजार से जाकर खरीद लाओ, और बाजार वाले दाम बढ़ाते जा रहे हैं, पता नहीं ये मूल्य कहाँ रुकेगा। मनुष्य के जीवन की अगर आवश्यकताएं इतनी महंगी होते जा रहे हैं, घर में अन्न का संचय था। इस्कान के एक भक्त एक बार गए थे हमारे घर, तो देखे घरों में अन्न की ढेरी जहां तहां रखी थी, तो वो बड़े चकित हो गए। और उन्होंने लिखा था कि मैं गया उस घर में तो अनाज की बहुत ढेरियां रखी हुई थी, धान की, चावल की, गेहूं की, चने की। वो लिखे अपनी डायरी में, लिखे कई बार चर्चा करते। जयप्रता का महाराज उनको भेजे थे, घूमते आइएगा उधर बहुत से भक्त हैं, तो गए थे, बड़े प्रभावित हुए देख करके अनाज। तो प्रभुपाद जी के विचार को लिखे कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि प्रत्येक घर में पर्याप्त अनाज रहना चाहिए और कम से कम एक गाय, प्रभुपाद जी ने लिखा। जैसे कि गो दुग्ध जो अमृत है, सबसे बेस्ट दवाई भी है और पेय है, प्रत्येक घर में रहना चाहिए, प्रभुपाद जी लिखे हैं। प्रचुर अन्न रहे और घी दूध रहे, यही घर का, यही घर का रत्न है। वास्तव में कलयुग वर्णन में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की शून्य प्राय सुशब्द, लोगों के घर बिल्कुल शून्य रहेंगे कलयुग में। शून्य यही है, अगर भोज्य सामग्री पर्याप्त नहीं है, दूध दही नहीं है, तो घर सूना है। और सब चीज रखकर क्या करेंगे, टीवी सीधी तो सर्वनाश का साधन। ये टीवी कितना 24 घंटा चले लेकिन घर सूना है। तो कोई घर में आ जाए तो केवल जगह से जगह कृपा करेंगे तो चाय का पूछ लेंगे, चाय पियेंगे, चाय कौन सा पेय है कि पियेंगे। तो देखिए भगवान देख रहे हैं श्री मथुरा जी में कि घरों में बड़े बड़े कोष्ठ हैं, और कोष्ठ कैसे, तांबा और पीतल के बने हुए, धान्या गाराणी सिद्ध स्वामी जी लिखते हैं, धान्य के आधार, अन्न के आधार जहां रखने के लिए, इसको भगवान देख रहे हैं। परीक्षा दुरासदाम, और मथुरा जी को उन्होंने देखा कि परीक्षाएं हैं, गड्ढे हैं नगर के चारों तरफ बहुत विशाल, और इसके कारण मथुरा में प्रवेश करना भी दुर्गम था, कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता था। दुरासदाम, दुर्गमाम, दुर्गम थी मथुरा। ये प्रश्न हो गया कि तब ये गोप लोग कैसे प्रवेश कर गए, जब राजा का खास आदमी ही लाया है तो इसके लिए परमिशन एंट्री थोड़े कठिन हो सकती है, इसके तो सब सिग्नल ग्रीन था कि इसके लिए जा सकते, प्रवेश कर सकते। इन खाई के कारण मथुरा दुर्गम थी, दुरासदाम। उद्यान रम्य को बनो को शोभिता, और मथुरा जी ने कोई कोई निकट, कोई भीतर भी बहुत से उपवन थे, उपवन कहते हैं मनुष्यों के लगाए हुए प्लांटेशन, बहुत कलात्मक ढंग से प्लान से मथुरा के चारों तरफ उपवन लगाए गए थे, बिल्कुल निकट। उपवन कहते हैं, उप माने निकट, जो निकट का वन हो और मनुष्यों के द्वारा लगाया हुआ हो तो उसको उपवन कहते हैं। इसके साथ उद्यान भी थे जो थोड़ा मथुरा से दूर थे, उद्यान भी देखे चारों तरफ, उपवन भी देखे, और अत्यंत रम्य रम्य आए। उन उपवनों को, उद्यानों को देख करके कोई ऐसा नहीं था जिसके मन में ये इच्छा न हो जाए कि जरा इसमें घूमे। और वो आजकल का केवल पार्क नहीं, प्रयुक्त मतलब पर्याप्त फल और फूल से लदे हुए वृक्ष रहते थे, लताएं रहती थी, इसको श्री भगवान देख रहे हैं। सौवर्ण श्रृंगा तकहर में निष्कुट ही श्रेणी सभा भी भवन रूपस्कृता वैदुर्ज वज्रा मलमील विद्रुमयी मुक्ता हरभीष बलभीष देवीषु। और क्या क्या श्री कृष्ण देख रहे हैं श्री बलराम जी के साथ, सौवर्ण सुवर्णमय श्रृंगातका चतुष्पथ, जो मथुरा जी के चौराहे थे, चतुष्पथ कहते हैं चारों तरफ जो रोड निकलता है, चौराहा चतुष्पथ, इसको संस्कृत में श्रृंगातक कहा जाता है। तो श्रृंगातक जो थे लगभग स्वर्णमय थे, वहां अलकतरा और पत्थर का नामो निशान नहीं था, चतुष्पथ जो थे वे सोने के बने हैं, स्वर्ण स्वर्णमय। कितनी सुंदर होगी मथुरा, चौराहे भी सब सोने के, और इसके साथ हरम्याणी धनिनाम गृहाणी च, ये सौवर्ण सबके लिए लगेगा, सौवर्ण श्रृंगातका सौवर्ण हरम्याणी, हर में कहते हैं ऊंचे ऊंचे भवनों को, तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं धनिना गृहाणी, धनियों के गृह को हर में कहते हैं, प्रासाद ऊंचा ऊंचा भवन, लगभग स्वर्णमय थे। सौवर्ण सुखदेव गोस्वामी ऐसा मत समझिए कि ऐसे ही बोल रहे हैं सब सोना सोना सोना, सोना ही ज्यादा लगा हुआ है बल्कि घरों में, स्वर्णमय है, स्वर्णमय चतुष्पथ, स्वर्णमय धनियों के मकान और निष्कुट। निष्कुट कहते हैं गृहस्थित बगीचा को, छोटे बगीचा को, आराम भी उसको कहते हैं, निष्कुट। जैसे ये श्री राधा रानी की वंदना में एक निष्कुट शब्द आता है ना, क्या हरि निष्कुट वृंदावनेश, तो हरि का अर्थ है ग्रीन हरा और निष्कुट का अर्थ है बगीचा, छोटा बगीचा जो गृह में किसी के होता है, घर घर में ऐसे बगीचा। इनसे मथुरा जी बहुत सुंदर, निष्कुट गृहोचिता आरामा चत्तई श्रेणी सभा भी, सभा भी श्रेणियों के बैठने का स्थान। सभा कहते हैं जहां कुछ लोग उपवेशन करते हैं, बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, तो विचार विमर्श करते हैं या तमाशा देखते हैं, तो उसको उपवेश स्थान कहते हैं, जहां बैठते हैं, तो सभा भवन भी कहते हैं। तो श्रेणी सभा भी, श्रेणी का अर्थ होता है ऐसे शिल्पी, ऐसा काम करने वाले जो एक तरह के काम करते हैं, तो उनके घर अलग अलग होते हैं, अलग अलग। पहले ऐसा नहीं था कोई कहीं भी बस जाए, किसी भी मोहल्ले में और कहीं भी, ऐसा छूट नहीं था। एक समान काम करने वाले और जाति के अनुसार भी सबको स्थान दिया जाता था, उनको श्रेणी कहते। जैसे अगर माली कहीं बसे हैं तो एक एक जगह समान रूप से, माली भी श्रेणी कहे जाते हैं, नाई भी श्रेणी कहे जाते हैं, कई ऐसे श्रेणी हैं। श्रेणियों के सभा भवन, मीटिंग भवन, मीटिंग का मतलब केवल सरकार से विरोधी नारा लगाने के लिए मीटिंग नहीं, अपना मनोरंजन आदि ये सब करने के लिए सभा भवन। ये नहीं कि यूनियन भवन ये है, ये एकता, एकता को लड़ने के लिए यूनियन है, सभा भवन और अन्य भवन भी। तो श्रेणियों के सभा भवन और अन्य भवनों से श्री मधुपुरी अत्यंत अलंकृत थे। उपस्कृतां, इन भवनों से अलंकृत थे। वैदुर्ज वज्र मलनील विद्रुमयी, वैदुर्ज एक मणि होता है जो काला भी पीला भी अनेक वर्णों से युक्त होता है, वैदुर्ज। और वज्र, वज्र है हीरा को कहा गया है, तो वैदुर्ज मणि हीरा, स्फटिक मणि और नील मणि। इन सबसे मथुरा अलंकृत थे, और मुक्ता हरिद भी मोतियों से और मरकत मणि से, हरी भी माना हरे वर्ण की मणि से अलंकृत थी। जुष्टेश यथाजथम संयुक्तेश, ये सब मणियां लगाए गए थे भवनों में जहां तहां, तो यथाजथ समझ लेना चाहिए। एक ही वस्तु में कई मणियां लगी हुई थी, विशेषकर भावनों में। और बलभीषु गृह पुरो भागस्थ वक्र दारू छादन आदेश, छादन आदेश घर के आगे, भगवान ने भी देखा घर के आगे बाहर द्वार पर लकड़ी का छज्जा बना हुआ है धूप को रोकने के लिए और पानी का निवारण करने के लिए। और ऐसा नहीं कि घर से निकल लिए और बस भींगना चालू हो जाएगा, घर के बाहर भी छाया रहती थी। हरे कृष्ण। बलभीष उसको कहते हैं, मूल घर के बाहर, घर के सामने, जिसको आजकल बरामदा कह सकते हैं, लकड़ी का बना हुआ रहता है, आजकल तो सब प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, इसको बल्लभीषु कहते हैं। और वेदेशु, तो उन छज्जों पर वेदियों पर, वेदी कहते हैं घर के भीतर और घर के बाहर बरामदे में जो वेदी बनती है उसको, दीवार को भी सुरक्षित रखने के लिए, नीचे वेदी और ऊपर बल्लभी, इन भवनों के ऊपर, छज्जों के ऊपर और वेदियों पर आविष्ट बैठते थे। आविष्ट का अर्थ बैठते थे कौन कौन? पारावत और बरही। ये उपलक्षण है, और भी अनेक प्रकार के पक्षी बैठते थे। पारावत कबूतर को कहते हैं ना, कबूतर। पारावत और बरही नादुताम, वो गुनगुन करते रहते थे, कबूतर और मोर बोलते रहते थे और अन्य कोयल आदि पक्षी भी। तो इससे मथुरा जी नादुताम बड़ी ही गुंजारित थी, पक्षी बोलते रहते थे। भगवान ने बोलते हुए भी सुना, देखा मयूरों को और पक्षियों को। जुष्टेश जाला मुखरंध कुत्तिमेश आविष्ट पारावत बरही नादुताम। जाला मुख गवाक्ष, खिड़की से जाला मुख रंध कुत्तिमेश, जाला मुख से युक्त और रंध कुत्तिमेश जाला मुख रंध्रेशु गवाक्ष छिद्रेशु च कुत्तिमेशु मणिबद्धासु भूमिषु। मणियों से जो भूमि जड़ी होती है, मणि होती है, तो उसको कुत्तिम कहते हैं। तो कुत्तिम से मणि भूमियां थी, इन पर कबूतर और मयूर बोलते थे, नाचते थे। और इसके साथ साथ भगवान ने देखा कि श्री मथुरा का गली, छोटा रोड या बड़ा रोड और सब कुछ बिल्कुल छिड़काव किया गया है सुगंधित जल का। संसिक्त रथ्यापण मार्ग चतरा, संसिक्ता में पूर्ण सिक्त है। ध्यान रखना चाहिए कि वह महीना फागुन का है। फागुन है, अमावस्या आने ही वाली है, एक ही दिन बाकी है, तो लगभग गर्मी का दिन होता ही है। तो सिक्त किया गया है मिश्रा जी के, क्या क्या सिक्त हैं? तो रथ्या आपन मार्ग और चतुर। रथ्या कहते हैं राजमार्ग को, जिस पर रथ चल सके उसको रथ्या कहते हैं। रथ्या बड़े बड़े चौड़े मार्ग को रथ्या कहते हैं। और मार्ग उसके अलावा और छोटे छोटे मार्ग, आपन बाजार, बाजार जो था वो भी सब सिक्त था। नीचे रोड थोड़ी धूल गर्दा, प्लास्टिक का तो उसमें नामो निशान था ही नहीं, एकदम स्वच्छ थी मथुरा। भगवान उसको देख रहे हैं। आपूर्ण कुंभय दधि चंदन अक्षित ही, और घड़े जहां तहां रखे गए थे द्वार पर, आपूर्ण कुंभ जल से भरे हुए घड़े रखे गए थे। दधि चंदन अक्षित ही, दधि और चंदन से सिक्त थे घड़े या द्वार। दही छिड़के गए, दही बहुत उत्तम मंगलमय चीज है, देखने में भी खाने में। इन सब चीजों का छिड़काव किया जाता था द्वार पर, घरों पर। भगवान श्री कृष्ण के लिए मधुपुरी सजी थी। भगवान की शक्तियां जो नित्य हैं, वे भगवान के आगमन से पहले ही मथुरा जी को सजा करके रखी। मथुरा जी स्वयं ही एक रमणी है, भगवान की प्रिया है, वो अपने को वासक सज्जा की तरह सजा करके रखी। सूरदास जी ने इस पर बहुत अच्छा अच्छा पद गाया है, पदों को गाया जाएगा बाद में। तो मथुरा जी सजी हुई एक रमणी की तरह, उस स्त्री की तरह जिसके पास उसके प्रियतम पति आ रहे हैं। वास्तव में मथुरा कृष्ण से ही अच्छी लगती है, इसके प्राण है। जैसे किसी पतिव्रता नारी का प्राण उसका पति है, तो अपने पति के आगमन की वो सूचना पा करके उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती है, ऐसे ही मथुरा जी तैयार होते हैं। रमणी के कई विविध अंग होते हैं, तो सूरदास जी वर्णन करते हैं कि क्या क्या दृश्य मथुरा रूपी रमणी का क्या क्या है। बड़ा सुंदर साहित्यिक वर्णन किए, तो कलश सोने के जो लगे हुए हैं पीले पीले, तो वर्णन करते हैं कि मानो ये मथुरा के स्तंभ हैं, मथुरा नगरी के रमणी के। और हमको पूरा ध्यान नहीं है, वो बड़ा अच्छा वर्णन किए। सभी लोग श्री हरिश्री जी कहते हैं कि मथुरा अपने प्रियतम के आने पर अपने को पूर्ण सजा करके दुप्त हो गई है। और तो एक बार वेणु गीत में कहते हैं कि वृंदावनम इदम मन्ने भाल में व धरा स्त्रिय सौभाग्य भूमि श्री कृष्ण तिलको जत्र राजत। मैं तो ब्रजमंडल को, हरिश्री जी कहते हैं, मैं इस ब्रजमंडल को इस पृथ्वी रूपणी नारी का भाल मानता हूं, मस्तक मानता हूं। जैसे कोई स्त्री होती है तो उसके उसका ललाट होता है, तो इस पृथ्वी रूपी रमणी का ललाट है वृंदावन। और जैसे किसी रमणी के ललाट में तिलक शोभित होता है, तो समस्त सौभाग्य के आधार श्री कृष्ण ही, जिसके सौभाग्य के सूचक तिलक हैं। इस पृथ्वी का ललाट है वृंदावन, और वृंदावन में श्री कृष्ण उसके तिलक की तरह है। सौभाग्य भूमि श्री कृष्ण तिलको जत्र राजति तिलक। ऐसे श्री भगवान मथुरा जी में आ रहे हैं, तो मथुरा वो तो चिन्मय नगरी है, स्पिरिचुअल नगरी है, रमणी है, अपने को सजाए पूरा, बहुत सुंदर लग रहा है। इसीलिए तो भगवान दुग्रिक्षु हो गए। क्या परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण किसी नगर के पत्थर दीवार गली को देखना चाहेंगे? इसको देखने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दिदृक्षु, श्री कृष्ण देखने के लिए ललायित थे। तो उनकी प्रिया है श्री कृष्ण की, उनका अपना निज धाम है, धाम में भी जहां वो जन्म लिए हैं, और श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो वो सजी हुई है और उसकी शोभा को श्री भगवान के नेत्र देख रहे हैं। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी दिदृक्षु शब्द कह रहे हैं, देखने के अभिलास। केवल फॉर्मेलिटी नहीं थे, चल थोड़ा घूम लें मथुरा कैसी है, देखने की लालसा है, एक एक दृश्य तो देख रहे हैं। प्रसून दीपावली भी मथुरा जी सजी हुई थी प्रसूनों से, फूलों से, मालाओं से और प्रदीपों से। दीपावली थी, दीपावली और दीप अवली, दीपों की श्रेणियां जिस दिन लगाई जाती हैं और किसी नगर को सजाया जाता है, घर को सजाया जाता है, जगमग करता है दीप से, तो दीपक जले हुए थे स्वागत के लिए भगवान के। दीपावली और प्रसूनावली, फूलों की पंक्तियां, फूलों की मालाएं और दीपक की मालाएं, इनसे श्रृंगार था मथुरा जी का। और सब पल्लवई ही सबृंद रंभा क्रमुक, सब पल्लवई पत्तों से श्रृंगार हुआ, वृक्षों के नए नए कोमल पत्तों से, आम्र के पत्ते से या अशोक के पत्ते से श्रृंगार था सब जगह। महीन रस्सी में बांध बांध करके पत्ते लटकाए गए थे, ये मंगल का चिन्ह है। सब जगह मथुरा सजाई गई थी, सबृंद रंभा क्रमुक है, सबृंद रंभा क्रमुक है। केले के पेड़ जहां तहां रोपे गए थे, जो फल के साथ थे और फूल के साथ, पहले से ही नहीं लगे थे, नए अभी रोपे गए थे, उनमें भी फल और फूल लगे हुए रंभा में, कदली में, केला में, और क्रमुक ही जहां तहां सुपारी के पौधे लगाए गए थे जिसमें फल थे, फल के साथ पूग पोत उसे कहते हैं। सखेतु भी और श्री मथुरा जी विविध झंडों से, ध्वज से सजाई गई थी, सपट्टी कही और पट्टिक से भी, पट्टी कहते हैं बीते भर वितस्ती प्रमाण कपड़े की पट्टी को, बीता के द्वारा बीता से कहते हैं, इस अंगुली से इस अंगुली के अंत तक इसको बीता कहते, वितस्ती संस्कृत में, इतने लंबे लंबे कपड़े, थोड़े चौड़े कपड़े सब सजाए गए थे, जहां था पट्टी कही, सब पट्टी कही। सोलंकृत गृह द्वारा तो सब जगह घर द्वार आदि का श्रृंगार किया गया था, खासकर के द्वार के बाहर से पट्टियां लगाई गई थी, सब तरह से भूषित थी। इस संक्षेप में श्री मथुरा जी का वर्णन किया गया। ऐसे पुरी में श्री कृष्ण और श्री बलराम प्रवेश कर रहे हैं, और जो प्रतिक्रिया हुई सो हुई, मतलब सारा जन समुदाय तो श्री कृष्ण को देखने के लिए मचला है, जो घरों में रहती हैं, जिन पर लज्जा का अंकुश होता है, ये सारी नारियां मथुरा की दौड़ पड़ी भगवान कृष्ण को देखने के लिए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, तामसं प्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ वृतौ वयस्यै नरदेव वर्त्मना द्रष्टुं समीयुः त्वरिता पुरस्त्रियः हर्म्यारु चैवारुरुः नृपोत्सुका। हे नृप, हे महाराज परीक्षित, नरदेव वर्त्मना राजमार्ग से, राजा जिस मार्ग से चलता है मुख्य रूप से उसको राजमार्ग कहते हैं। राजमार्ग का एक नेशनल हाईवे अर्थ नहीं होता है, राजमार्ग का अर्थ है राजा का मार्ग, जिसको राजा चलता है, और जिस समय राजा चलता है रोड पर सभी किनारे हटा दिए जाते, कोई नहीं रहता। जैसे इस समय राष्ट्रपति की गवर्नर की गाड़ी आती है तो कई पुलिस लग करके लोगों को हटाते हैं, कार अलग करो, ये करो, बल्कि रोक देते हैं रास्ते से, कोई आवे ही नहीं। आज तो कोई खास राजमार्ग नहीं है, उसमें राजमार्ग होते श्रीनगर में बहुत सुंदर, तो राजमार्ग पर श्री कृष्ण बलराम चल रहे थे अपने सखाओं के साथ। नंद बाबा अन्य कुछ अपने साथियों के साथ जाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने रोक दिया था कि बाबा आप आराम कीजिए, हम लोग घूम करके आते हैं। तो श्री नंद बाबा बलराम जी को लगाए थे कि तुम देखते रहना इसको। और कहां कहां नंद बाबा को हैरान करें, उन्होंने उनकी इच्छा से सब चलता है, कृष्ण की इच्छा से, तो उन्होंने रोक दिया था नंद बाबा। ये दोनों जा रहे थे राजमार्ग पर, सबसे मुख्य मार्ग, ये भी अर्थ होता है राजमार्ग, मतलब मार्गों में राजा, ये भी एक अर्थ होता है। श्रेष्ठ मार्ग पर, मथुरा के मुख्य मार्ग पर चल रहे थे, मुख्य मार्ग होली गेट से कहां पड़ेगा, मुख्य मार्ग वही है, उधर का भीष के पास आता है। अब तो रूप बदल गया है मथुरा जी का, लेकिन उसमें भी जो मुख्य मार्ग था उस पर कृष्ण बलराम चल रहे थे, अपने घर में है, अपने राजधानी में है, इसीलिए दोनों परम आनंद में हैं। जैसे ब्रज में आनंद में है, वैसे यहां भी आनंद में है। चल रहे थे। जिन ही स्त्रियों को पता लगा कि कृष्ण बलराम आए हैं मथुरा में, वे ही अपना काम और अपना जो कुछ भी जो कुछ स्थिति थी सब छोड़ करके और कृष्ण को देखने चल दी। त्वरिता सुखदेव जी कहते हैं कि तामसम प्रविष्टो वसुदेव नंदनम, स्त्रियों ने सुना कि वसुदेव नंदन, दोनों वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और बलराम सम प्रविष्ट मथुरा में सम्यक प्रवेश कर चुके हैं, तो द्रष्टुम समययु उनको देखने के लिए सम्यक इयु, सम्यक अभिमुखे न इयु, बिल्कुल श्री कृष्ण बलराम के सामने आने की कोशिश की। तो उसमें से बहुत सी स्त्रियां थी जो कि सामने ही आ गई श्री कृष्ण बलराम के, बिल्कुल उनको देखने के लिए, और कोई ध्यान नहीं है कि उनको कौन क्या कहेगा, क्या देख रही हो, घर का काम है, सब नहीं नहीं, सब कुछ भूल करके कृष्ण को देखने के लिए सामने आ गई। और जो सामने नहीं आ सकती थी, अधिकतर जिन पर लज्जा का अंकुश था, नवविवाहिता, वो सामने नहीं आ सकती थी ससुर के सामने या अपने ज्येष्ठ के सामने और सबके सामने, ये सब तुरंत बड़े बड़े भवनों पर चढ़ गई और खिड़कियों से अथवा छत पर से देखने लगी, अथवा इसके बाद हरनाड़ी आरुरहु ऊपर बहुत चढ़ गई, क्योंकि श्रीकृष्ण चल रहे थे धीरे धीरे सखाओं के साथ, तो अब नीचे से दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए अब ऊपर चढ़ गई इनको देखने के लिए। त्वरिता का अर्थ तुरंत, कोई काम कर रही थी, कोई खा रही थी, कोई पी रही थी, तो काम की पूर्णता पर ध्यान नहीं गया, तो सुना कि श्रीकृष्ण आए हैं बलराम जी के साथ, उनको देखने के लिए द्रष्टुम समययु देखने के लिए चले, तो कोई कोई कोठे पर चढ़ गई, खिड़की से देख रही हैं, कोई छत से देख रही हैं, और कोई 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 तो बिल्कुल रास्ते पर ही आकर किनारे, रास्ते का मतलब ये रास्ता रोक करके नहीं, दोनों किनारे खड़े हो गए देखने लगी। भगवान इतने सुंदर हैं कि उनको देखना ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, देखने के लिए आना, इस बुद्धि से नहीं, पुरुषार्थ बुद्धि से नहीं, तो इतना आकर्षण है श्री कृष्ण में, इतना सौंदर्य है कि उनको देखने की लालसा आ गई। तो क्या इनको पहले से पता था कृष्ण का? हाँ, पहले से पता था, पहले से पता था, यहां तक कि श्री गोपीजनों के सौभाग्य की बातें भी सुनती थी कि गोपियां धन्य है जो श्री कृष्ण को देखती रहती हैं, वन में जाते समय और वन से आते समय शाम को देखती रहती थी। ये सब बातें मथुरा की नगरियों को पता था, क्योंकि श्री ब्रजमंडल बहुत दूर नहीं है, वृंदावन और नंदगांव बहुत दूर नहीं है, गोवर्धन जी बहुत दूर नहीं है, श्री कृष्ण के बारे में सब सूचना होती रहती थी उनको। तो जिन ही उन्होंने सुना कि वसुदेव नंदनम, वसुदेव जी के दोनों पुत्र मथुरा में आए हैं, तभी आ गई देखने के लिए। कोई भी काम धंधा पर, कोई भी यहां तक स्नेह पर भी ध्यान नहीं दिया। यहां तक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो अभी माताएं थीं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में थे, उनका स्तन पी रहे थे या उनको दूध पिला रहे थे, झटपट बच्चे को छोड़ करके और चल दे श्रीकृष्ण को देखने के लिए। वास्तव में श्रीकृष्ण भक्ति मनुष्यों का जीव का ऐसा कर्तव्य है। तो ये कथा चल रही है गंगा जी के तट पर, और उस कथा में श्रोता है श्री नारद जी, भगवान वेदव्यास देव, परशुराम जी, वशिष्ठ जी, अत्रि, सेवन, संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग जुटे हुए हैं सुनने के लिए। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि श्रीकृष्ण को देखने के लिए मथुरा की स्त्रियों ने, स्त्रियों में कितनी उत्सुकता थी और क्या क्या काम छोड़ दी थी। आजकल श्रीकृष्ण के भजन के लिए वैसा ही अवसर है, फिर भी लोग अनेक प्रकार के कामों में फंसे हुए हैं। कितना भी अर्जेंट हो, कोई भी कथा चले, यहां तक भगवान खड़ा भी हो जाए कहीं आकर के, तब भी लोग, अभी हमारे बच्चे का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए कुछ भी त्याग रहे हैं, है ना? देखा जा रहा है, नग्न सत्य है, इसके लिए कोई ध्यान नहीं है। परिवार में ऐसी आसक्ति है, देह में आसक्ति है और अनेक प्रकार से आसक्ति है, नहीं हमारा ये छूट जाएगा, हमारा ये छूट जाएगा, हमारा ये छूट जाएगा। अरे कृष्ण के लिए जो त्याग नहीं सकता, क्या उनको पाने की अभिलाषा करेगा? ऐसा नहीं है कि बस ऐसे जीवन जीवन जीते रहिए और कृष्ण मिल जाएंगे, उनके लिए बहुत कुछ करना होता है, ऐसे ही नहीं मिलते हैं। देखिए इन मथुरा नगरियों का भाव भगवान के प्रति, उनसे पूर्व से कोई संबंध नहीं है, केवल इतना ही सुने हैं कि परम परम सुंदर पुरुष हैं, और ये भी सुना है कि ये भगवान के अवतार हैं, श्री भगवान मथुरा में आ रहे हैं। आजकल तो भगवान भी कहीं सुना जाए कि आए हैं तो कोई देखने नहीं जाएगा, और भगहीन किसी आदमी को देखने के लिए जाएगा जो कंडम व्यक्ति को देखने के लिए भीड़ लगती है। सिनेमा का कोई अभिनायक आ जाए, अभिनेता आ जाए, उसको देखने के लिए भीड़ दिखती है। यह मनुष्यों के डल बुद्धि का परिचय है, क्या देख करके करेंगे। पहले के लोग ऐसे थे महान, भगवान को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ती। तो मथुरा के नगरियों ने जब सुना कि वसुदेव पुत्र आए हैं, उस समय यही उनको ज्ञान था कि ये वसुदेव जी के पुत्र हैं, अथवा वसुनाम प्रबलो द्रोण, वसुओं में श्रेष्ठ वसु हैं नंद बाबा। जब उन्होंने सुना कि नंद बाबा के दोनों पुत्र आए हैं, वसुदेव के दोनों पुत्र आए हैं, तो उनको देखने के लिए त्वरिता समीज तुरंत आ गई, त्वरिता त्वरा से जो दौड़ करके सारा काम धंधा छोड़ करके आ गई, और हरम्याण च आरुरुह ऊंचे ऊंचे भवनों पर चढ़ गई। कैसे वो चढ़ रही होंगी, उसमें लिफ्ट नहीं था, इतना जल्दी 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 ऊपर जा रही होंगी खिड़की से देखने या भवन के ऊपर, उस पर चढ़ गई। हे उत्सुका, उनमें परम औत्सुक्य था, बहुत उत्सुक थी भगवान को देखने के लिए, श्री कृष्ण को देखने के लिए। ये सब जगह प्रचार था कि ऐसा सुंदर पुरुष अब तो कोई नहीं हुआ जैसे श्री कृष्ण है, अद्भुत तेज है, अद्भुत प्रभाव है। केवल तेज और प्रभाव की ही चर्चा नहीं होती थी, और तरह के पराक्रम की चर्चा होती थी कि ये 7 दिन तक पहाड़ उठा करके रहे। ये वर्णन आगे आएगा, इस मथुरा के लोग जानते थे। 2 बार दवानल पान किए, अघासुर का वध किए, कालिये का दमन किए, यह लीला किए, वह लीला किए, और परम सुंदर हैं, परम मधुर वेणु बजाते हैं। तो उनको सुना था और इसमें तो यहां आए हैं, इतना सुनकर के उनको कैसे धीरज धैर्य रह सकता था कि वे किसी काम में है तो काम पूरा करने की सोचे। सुना कि वे आए हैं, नंदगांव से यहां आए हैं, बस दौड़ पड़ी देखने के लिए। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, काष्ठि विपर्य धृत वस्त्र भूषण विस्मृत चैकम जुगले स्वथा परहा कृतैक पत्र श्रवणैक नूपुरा नांत्वा द्वितीयम त्वपराश्च लोचनम। कोई कोई मथुरा नागरी काश्चित पुर स्त्रिय, कोई कोई मथुरा नगर की स्त्रियां विपर्य धृत वस्त्र भूषणा, विपर्य विपरीत रूप से वस्त्र और आभूषण धारण की थी, धारण कर रही थी, जो पहन रहे थे वस्त्र और आभूषण धारण कर रहे थे। यह सुनते हैं कि कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश किए हैं संप्रविष्ट, तो वे जैसे ध्यान नहीं रहा कि वस्त्र को कैसे पहनना है, उल्टा पहन लिया, उल्टा श्रृंगार कर लिया। लेकिन चूंकि वस्त्र के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसने वस्त्र धारण नहीं किया, ऐसी बात नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं। विपर्य धृत वस्त्र भूषणा, वस्त्र पहना लेकिन उल्टा, वस्त्र का छोर जो नीचे रहना चाहिए वो ऊपर पहन लिया, इस तरह से है। या कंचुकी बांध रही थी कोई कोई तो उसको उल्टा बांध लिया है, ये अर्थ है। विपर्य धृत वस्त्र भूषण, और श्रृंगार पर ध्यान नहीं था, कृष्ण को देखने की इतनी लालसा हुई कि उसी पर ध्यान था, कहाँ है, किस क्षेत्र में है, कौन गली में है, और इधर निकट आ गए संत, हमारे घर के बिल्कुल निकट आ गए हैं, अथवा निकट नहीं भी आए हैं तो उनको दौड़ करके दूसरे के घर में जाकर के दूसरे गली में वहां चढ़ करके देखना है, कोई जरूरी नहीं है कि अपने घर के पास ही आएंगे तभी देखना है। तो ये चली गए तो सुखदेव गोस्वामी जी ध्यान करते हुए कहते हैं कोई कोई मथुरा नगरी उल्टा वस्त्र और आभूषण पहने थे, जैसे वो पहने हैं वैसे अपनी दिव्य दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी देख कर वर्णन कर रहे हैं। काश्चित विपर्य धृत वस्त्र भूषण है, कोई कोई स्त्रिय विपर्य विपरीतम जथा से तथा धृतानी वस्त्राणी भूषणानी के जाधिकता समीय उल्टे पलटे वस्त्र और आभूषण पहन करके आई देखने के लिए, अथवा अपराच और कोई कोई मथुरा नगर की नारियां अपराश्च युगलेशु अपि एकम विस्मृत च, जो दो जोड़ा होता है गहना, जैसे कान में कुंडल, इस कान में भी इस कान में भी कर्णाभूषण, इसको जुगल कहते हैं, या हाथ में कंकर धारण चूड़ी धारण करने इसमें भी धारण करते हैं तो इसमें भी धारण करते हैं, है ना, तो इसको जुगल कहते हैं, या पैर में नूपुर धारण करना है तो दाएं पैर में बाएं पैर में दोनों में धारण करना, लेकिन जुगल धारजेशु जो जुगल धारण करना चाहिए उसमें से किसी किसी को विस्मृत एकम विस्मृत, कोई अभी पहनी थी एक हाथ में एक चूड़ी पहनी थी तो दूसरे का ध्यान ही नहीं रहा, जैसे चूड़ी पहनने का ध्यान नहीं रहा, चूड़ी एक कांच की चूड़ी थोड़ी नहीं सोने की चूड़ी है, तो पहनने का ध्यान नहीं रहा, कुंडल अभी कान में लगाई है तो बस किसी तरह लटका करके और चल दी, ध्यान ही नहीं रहा कि इसको पूरा करना है, नहीं पहने से इतना ही पहनना है, पहनना है तो जितना पहनना है उतना ही पहनना है, तो कोई कोई एक कान में एक कुंडल एक दूसरा नहीं धारण करना चाहिए तो दोनों धारण करना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं है, एक कोई एक नूपुर भूल गई है, कोई कुंडल भूल गई, कोई कंकड़ भूल गई, जितना पहना है उतना ही पहना, एकम विस्मृत च च शब्द अनुक्त समुच्चय, च शब्द से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसी तरह से जितना भी नहीं कहा गया है सब समझ लेना चाहिए, कि उल्टे पलटे आभूषण पहन करके अन्यश्च कृतैक पत्र श्रणैक नूपुरा, कृतम निहितम एकम एव पत्रम तातंकम जयस्ते श्रवणे, किसी किसी एक, एक कान में एक ही कुंडल है और मैं सूत्र श्रोत्र दोनों कान में केवल एक कुंडल है एक कान में और चरण में एक नूपुर है और कंकड़ एक है, इसके द्वारा समझ लेना चाहिए, थोड़ा सा संक्षेप में श्री सुखदेव को स्वामी हिंट दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि चित्त आभूषण पर नहीं रहा, आभूषण का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, सिर्फ इसको देखने की लालसा उफान मार गई। अच्छा, ये तो वस्त्र आभूषण की बात है, जो जीवन में परम आवश्यक कार्य है भोजन करना, तो कोई कोई मथुरा स्त्री भोजन कर रही थी, भोजन पर बैठी, सुनते हैं कि कृष्ण बलराम आए हैं, भोजन का ध्यान नहीं रहा, खाना छोड़ भोजन छोड़ दिया, यहां तक कि मुंह धोने का भी ध्यान नहीं रहा, जूठे मुंह चल दी, हाथ भी धोए नहीं धोया, इतना ध्यान रहे तब न कि हाथ धोना चाहिए या कुल्ला करना चाहिए या अपमन करना चाहिए, ध्यान नहीं रहा, हाथ में लगा हुआ है जूठा, मुख में जूठा लगा हुआ है, चलो अस्मंत एका पदपाश भोजनम, कोई कोई मथुरा नागरी भोजन कर रहे थे तो भोजन का त्याग कर दिया और उच्छिष्ट मुख उच्छिष्ट हाथ चले गए देखने की, ध्यान ही नहीं था कि मेरा हाथ जूठा है, जब चित्त वृत्ति हाथ में रहे और सफाई पर रहे तब ना, जो कृष्ण में आविष्ट है तो देखने के लिए चले गए। तो कोई कोई भोजन कर रहे थे, भोजन छोड़ करके चले गए, और कोई कोई सोत्सरा, कोई कोई मथुरा की स्त्रियां ऐसी थी, कुमारियां, जिनका विवाहोत्सव चल रहा था, विवाह आदि उत्सव चल रहा था, पति से पाणी ग्रहण के लिए बैठी हुई है, फागुन का महीना था भी, वो लगन का दिन था वो, तो चल रहा है, पंडित जी बैठे हैं, सारे स्वजन बैठे हैं, और अब पति के साथ उसको परिक्रमा करनी है अग्नि की, उत्सव में बैठी है, जो उसने सुना कि श्री कृष्ण आए हैं और श्री बलराम जी आए, वो आश्रम से उठ करके चली गई, और भी स्त्रियां सब चली गई कृष्ण को देखने के लिए, विवाहोत्सव था। इस प्रकार का आवेश हुआ था भगवान को देखने के लिए, तो जिसका परिणय हो रहा था, विवाह हो रहा था, वह लड़की उठ करके चल गए कृष्ण को देखने के लिए। और ये ऐसा संकोच नहीं था, अगर पूछा जाए कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, इतना चेतना रहे तब ना, या विवाह की कोई लालसा रह जाए, कृष्ण को देखने की जो लालसा है वह किसी भी चीज में लालसा नहीं रह गई, तो सीधे उठ करके विवाह के आसन से चल देना, और वो उत्सुकता, वो त्वरा, तो जल्दीबाजी देख करके किसी ने रोका भी नहीं, रुकने का सोच ही नहीं सकता था कोई। सब लोग तो भागे कृष्ण को देखने के लिए, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, लेकिन स्त्रियों का विशेष बल सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। यदि पुरुष जाए कृष्ण को देखने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन स्त्रियों पर तो स्त्री को इस तरह से उठ करके जाना, पति के सामने या ज्येष्ठ के सामने, ससुर के सामने, स्वजन के सामने, ये बहुत बड़ी बात है। पर भगवान का ऐसा अद्भुत सौंदर्य है, ऐसा प्रभाव है, किसी को भी वह वश में कर लेते हैं। ऐसा नहीं सोच रहे थे केवल बांसुरी बजाते थे तभी वश में करते थे ब्रज में, ये कथा द्वारा सुनी है मथुरा की स्त्री कथाएं भगवान की उनके बारे में, इतना सुनी कि आए हैं वह सब कुछ हो गया। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं, अस्मंत का तदपाश्य सोत्सवा, और सोत्सवा एक अभी सौ उत्सवा, विवाह आदि उत्सव चल रहा था, और उसमें विवाह का उत्सव लगभग पूरा हो रहा था, नहीं पूरा नहीं, विवाह के पहले या बीच में कभी भोजन चल रहा था, और भोजन से उठ करके भाग चले बिना हाथ पांव धोए, उसको भागना नहीं कहेंगे, भागना तो त्वरिता अपने आप आवेश से दौड़ करके चलेंगे, जैसे किसी को भूत लग गया हो और चला जाए, तो कोई जानबूझ करके नहीं छोड़ता है, तो कोई काम का त्याग करता है तो जानबूझ करके नहीं कि मैं इसको छोड़ रहा हूं, नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनते ही उनको देखने की जो लालसा उत्पन्न हुई, उस लालसा ने उनके विवेक को बिल्कुल समाप्त कर दिया, तब तो वे चले गए कृष्ण को देखने के लिए। अभ्यज्यमाना अकृतोपमर्जना, किसी किसी मथुरा नगरी का अभ्यंग हो रहा था, मालिश रहे, उबटन लगा रहे, चाहे सखियों के द्वारा शरीर में उबटन लग रहा था, तेल लगाना, उबटन लगाना, इसको अभ्यंग कहते हैं, अभ्यंग हो रहा था। लेकिन उसे जिन ही सुना कि श्री कृष्ण बलराम आए हैं, तो वो तुरंत ही उठ करके उल्टे पलटे वस्त्र पहन करके चलिए, अकृतोपमर्जना, बिना स्नान किए, जबकि एक स्नान परम आवश्यक अंग है, अभी मालिश करे, तेल लगावे और स्नान न करे तो चंडाल माना जाता है, असस्पृश्य होता है, वास्तव में उसको छूना भी नहीं चाहिए। तो शास्त्र की एक नीति है कि तेल लगाने के बाद, उबटन लगाने के बाद स्नान करना चाहिए, जैसे साबुन लगाने के बाद स्नान करना चाहिए, नहीं कि साबुन लगाए और चल दिए, कोई धोया नहीं, कुछ नहीं तो साबुन नहीं लगाया होता तो अच्छा होता ना, साबुन लगा करके और बिना जल से धोए बिना स्नान किए चल ले ठीक नहीं। तेल तेल लगा रहे थे, सखियां लगा रहे थे या स्वयं लगा रहे थे तो भी, लेकिन कृष्ण को देखने की लालसा से चल गई। अकृतोपमज्जना, अकृत उपमज्जना, उपमज्जन माने स्नान, अकृत स्नान बिना स्नान के चल गए। स्वपंत उत्थाया, कोई कोई उस समय लेटी थी सोई थी या गाढ़ निद्रा में सो गए थे जो भी, परंतु यह निःस्वन सुनते ही कृष्ण बलराम के दर्शन के आनंद से लोग इतना बोल रहे थे, निःस्वनम बहुत आवाज उत्पन्न हो रही थी, इसको सुन करके उठी और वो भागी, उठ करके सीधे उठी और वहीं आवाज की तरफ गई। आवाज सुन करके उस आवाज में भी इतना जागृत है, इतना आकर्षण था, कृष्ण के विषय में लोग बातचीत करने लगे, हल्ला होने लगा, कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं, जो गोपियों के बहुत प्रियतम है जो ब्रज में रहते, इस तरह की आवाज उठ रही थी। और कुछ लोग तो झांझ ढोलक आदि बजा रहे थे जहां था आनंद से, तो इस निःस्वनम इस सुंदर ध्वनि को सुन करके कोई कोई उठी और देखने के लिए दौड़ी, मतलब छत पर चढ़ गई या सामने आई। प्रपाय यंतर भमपो ही माता, और कोई कोई माता अपने नवजात बच्चे को अपोही त्याग करके चल रही कृष्ण को देखने, छोटे से बच्चे को त्याग करके जाना ये कठोरता है, लेकिन इस ये कठोर व्यवहार है, इस पर ध्यान रहे तब ना, इस पर ध्यान नहीं था। जिसको संसार पर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, ये संभालना है, ये करना है, वो करना है, तो वो कैसे कृष्ण के पास जाएगा। ये सब भागवत के द्वारा सिखाया जा रहा है, गोपियों के व्यवहार से, मथुरा की नागरियों के हिसाब दृष्टांत से, इस तरह से कृष्ण से उन्होंने प्रेम किया। कौन ऐसा धर्म था, कौन ऐसा कर्तव्य था जिसको वो छोड़ नहीं सकती थी, विशेष करके गोपी जन, वो तो विरल है, उनका तो दृष्टांत अद्भुत है, पर मथुरा की नगरियां भी कम नहीं है, क्योंकि भगवान का आकर्षण सब जगह समान रूप से है। और भी जगह पर अभी जाते थे तो सब लोग दौड़ पड़ते थे उनको देखने के लिए, तो कोई कोई माताएं बच्चे का लालन पालन कर रहे थे, दूध पिला रहे थे, प्रपाय यंत्य पिला रहे थे उसको अपोहिया, पिलाना छोड़ करके और बच्चे को छोड़ करके चले गए। अगर व्यवहारिक दृष्टि से भी आप देखें तो बिल्कुल उचित है, भगवान के लिए इसको छोड़ना चाहिए, और बच्चे को तो फिर दूध पिलाना ही है, आधा घंटा के लिए छोड़ दिया गया तो मर नहीं जाएगा ना। मथुरा की स्त्रियों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो छोड़ा छोड़ा यही धर्म है छोड़ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम, छोड़ना ही धर्म है वास्तव में, यदि वो कृष्ण के लिए छोड़ा जाता है, भगवान के लिए, वो तो उनको ऐसा दृष्टांत नहीं बना सकता कि उन्होंने छोड़ा, ये किया वो किया, उनका तो अद्भुत था, भगवान डायरेक्ट आए थे मथुरा में, साक्षात थे, तो उनको देख करके कुछ भी छोड़ देना स्वाभाविक था। लेकिन इस प्राकृत जगत में, आज के समाज में भी यदि स्नेह का त्याग किया जाए कुछ काल के लिए तो यह बुरा नहीं है, यह ठीक है, इन्हें कुछ भी हो, कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा है, कुछ उत्सव चल रहा है, तो कोई पर हाँ ये तो चलता ही रहेगा, पहले घर को देखना है, ये तो चलेगा ही, रोज रोज चलता रहेगा, तो इस प्रकार की मानसिकता जिसकी होती है वो क्या कृष्ण से प्रेम करेगा। ये तो कुछ छोड़ करके जब प्रैक्टिकल भक्ति की जाती है तब धीरे धीरे मन बनता है, चित बनता है, भगवान में मन लग जाता है, लग जाने के बाद छूटना उसके लिए बिल्कुल स्वाभाविक होता है, यदि कृष्ण में मन नहीं लगा है तो छूटना ही महा मुश्किल हो जाता है, कैसे छोड़े, धर्म है इनका पालन, इसका पालन, उसका उसका, ये है ना, ये आदमी मान लेता है, मन में एक धारणा बैठी रहती है, ये हमारे लिए जरूरी है, ये जरूरी है, जैसे अर्जुन के मन में धारणा थी, नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, हमारे स्वजन मर जाएंगे, मैं कैसे द्रोणाचार्य पर बाण चलाऊंगा, कैसे भीष्म पितामह पर बाण चलाऊंगा, कैसे चलाए, बाद में चलाए ना, और आनंद से चलाए। चेतना का केवल अंतर है। जब आदमी के चित्त में कोई काम आवश्यक बैठा हुआ है तो बैठा है माया का प्रभाव, और चित्त में ये आ गया कि नहीं कृष्ण की भक्ति करना ही हमारे जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य है। भक्ति में बाधा देने वाला कोई भी विचार कोई भी वस्तु ठीक नहीं है। अगर इस प्रकार की चेतना आ जाए तो उस भक्त के लिए भगवान का स्मरण करना भक्ति करना आसान हो जाता है। जो चित्त में नहीं हुआ तो भजन करना कठिन लगेगा, बड़ा मुश्किल लगेगा। अगर चित्त में नहीं है तो इस प्रकार की कथा में एक दिन के लिए आना लगेगा कि अरे बाप रे बाप, पूरा संसार छोड़कर तू जाने, ये हमसे कैसे है, कैसे कुछ लोगों ने छोड़ा है। कुछ लोगों का स्वभाव है छोड़ देना, स्वभाव है, छोड़ते छोड़ते स्वभाव बन गया है। यहां कथा हो रही यहां छोड़ना चल रहे हैं, यहां हो रही यहां चलना, ऐसी बात नहीं है कि उनके लिए वो और संसार का काम धंधा जरूरी नहीं, लेकिन मन मूल चीज है। मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय, मनुष्य का मन ही कारण है बंधन का, मुक्ति का। मन से कोई बात निकल गई तो फ्री है, और नहीं मन फंसा है तो फंसे हैं। ये सब भगवान की कृपा से होता है। कृष्ण कृपा करके घूम जाते एक दो बार शहरों में चाहे गांवों में, तो इस इतने उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई मथुरा की स्त्रियों को उपदेश करने नहीं गया था कि ऐसा करना चाहिए, भगवान की बातें उन लोगों ने सुना था और आज आंख से देख रहे हैं, तो इसका एक प्रभाव हो रहा है। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी यह वर्णन करते हैं, विपर्यक धृत वस्त्र भूषणा, विपरीत वस्त्र भूषण धारण किया, तो शरीर का एक स्वभाव बन गया था, संस्कार बन गया था, तो संस्कार के कारण वस्त्र पहन ली, लेकिन जो आभूषण में कुंडल कंकड़ और नुपुर को भूल गई, तो अब वह अभ्यास टिक नहीं पाया। प्रतिदिन धारण करती थी, इस हाथ में पैर में कान में भूषण ध्यान करती थी, एक अभ्यास था, मन कहीं और भी गया है तो धारण कर ले, लेकिन अब यह अभ्यास भी काम नहीं किया श्रृंगार धारण करने। वस्त्र तक तो काम किया, अथवा भगवान की योग माया ने उनके लाज को ढक करके रखा, वो पहन ली शरीर के स्वभाव जैसे वस्त्र पहन ली, लेकिन श्रृंगार भूल गई। और श्रृंगार भूल गई, भोजन भूल गई, बच्चे को भूल गई, भूल नहीं गई, छोड़ करके चली गई, मतलब स्मरण ही नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो श्रीपाद सिद्ध स्वामी जी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी यह कहते हैं कि विपरीत वस्त्र भूषण धारण किया, उनसे भी श्रेष्ठ आवेश उनमें है जिन्होंने आभूषणों में एक को धारण किया एक को नहीं किया, उनसे भी ज्यादा आवेश उनका है जिन्होंने एक आंख में अंजन लगाया और एक में नहीं। न आंकवा एक आंख में काजल लगाई थी, लगा रही थी, और तब तक सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं मथुरा, तो आंख का श्रृंगार करने का ध्यान ही नहीं, एक ही आंख में काजल है एक में नहीं। तो ये तो देख रही है कृष्ण को, श्री बलराम जी को, श्रीकृष्ण को देख रहे हैं, मुख्य रूप से श्रीकृष्ण ही है ये, मथुरा की स्त्रियां श्रीकृष्ण को देख रही हैं, पर इनको सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं इनके आंख को। तब तो कहते हैं कि नाक्त्वा द्वितीयम, दूसरे नेत्र को न आंकत्वा, अंजन नहीं किया। यह देखिए, यही सौभाग्य है वास्तव में, यही भक्ति है। अगर मथुरा की स्त्रियां श्रीकृष्ण को देख रही हैं, तो श्री सुखदेव गोस्वामी जो विरक्त चूड़ामणि हैं, भक्तों में सबसे श्रेष्ठ, वे मथुरा की स्त्री के आंख पर देख रहे हैं कि उसमें काजल है और इसमें काजल नहीं, तो उनके भाव को, उनके प्रेम को सुखदेव गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं। वह कृष्ण को देखने से भी बढ़ करके है। मथुरा की स्त्रियों को देखा जाए जो जिनका नेत्र कृष्ण पर है। एक उर्दू में शायर है जिसने लिखा है कि मैं तो अल्लाह को नहीं देखा हूं, देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन जो अल्लाह पर देखते हैं, खुदा को देखते हैं, उनकी मैं नजर देखता हूं, उनकी नजर देखता है जो देख रहे। बड़ा सुंदर पद है, मुझे याद नहीं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जब इस तरह से वर्णन करते हैं वस्त्र का, आभूषण का, अंजन का और भोजन छोड़ने का, बच्चा छोड़ने का, तो इसमें मतलब वो उनका ध्यान कर रहे हैं। मथुरा की स्त्रियों का कैसे कौन छोड़ करके चली, कौन कैसे कहां खड़ी है छत पर कृष्ण को देख रही हैं और परस्पर बातें कर रही हैं। चुप नहीं है, लेकिन एक साथ सब कुछ कथा में नहीं कहा जा सकता है। कोलाहल हो रहा था तो सब कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, और अप्राकृत जगत के नारी पुरुष हैं तो इसलिए वो पद गान में ही सब व्यक्त कर सकते थे। उनके लिए गद्य में बात करना कोई जरूरी नहीं होता था। जो कथा गानम, उनकी जो साधारण बातचीत होती थी, गान है, गाते हुए बात करते। तो साधारण रूप से वस्त्र आभूषण उल्टे पलटे पहनना उनसे श्रेष्ठ है। वे जो एक श्रृंगार को धारण की दूसरे को नहीं, और उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो एक आंख में अंजन की हैं और दूसरे में नहीं, और उनसे भी ज्यादा आवेश उनमें है जो भोजन करके चले गए और भोजन छोड़ करके, और उनसे भी आवेश उनमें है जो विवाह के मंडप से उठ करके चली गई, और उनसे भी ज्यादा आवेश उसको है जो रोते हुए बच्चे को छोड़ करके कोई प्रवाह नहीं की चली गई। ये सब आवश्यक कर्म है, इनको छोड़ छोड़ करके गए। उनको कोई गुरु ने नहीं बताया कि छोड़ करके जाना चाहिए और तब छोड़ कर गए। स्वाभाविक भगवान का आकर्षण है। हरे कृष्ण। क्या क्या प्रभाव है? प्रथम प्रभाव सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे आगे। प्रथम प्रभाव यह था कि बहुत सुनी थी, बारंबार कृष्ण के विषय में सुनी थी, और कोई कृष्ण दूर नहीं थे। आज की लीला मथुरा में ताजी कही जाती थी, सब फैल जाती थी बात, श्री नारद जी द्वारा या और सबके द्वारा, या यहां तक कि ये ब्रज में कुछ लोग आते थे देख करके। कोल भील भी जाते थे मथुरा में कुछ काम के लिए, तो वे वर्णन करते थे, तो उसको सुनती थी। तो कभी देवता सरस्वती जी या ब्रह्मा जी बहुत साधारण वेश धारण करके मथुरा में सब बातें बताया करते थे, उनको पता था, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी आगे करते हैं। अच्छा, जब मथुरा की स्त्रियां भगवान को देखने लगी तो भगवान ने क्या किया आप देखिए, श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। मनांसिता सामरबिंद लोचन प्रगल्भ लीला हसितावलोकन जहार मत्त दुर्देन्द्र विक्रम दृशा ददत् श्री रमणात्मनोत्सव। अरविंद लोचन श्री कृष्ण, जिनकी आंखें सहस्रों कोटिश कमल से भी अधिक सुंदर हैं, वे श्री कृष्ण बहुत अन्याय किए। बेचारी मथुरा नगरियों के मन को बिल्कुल चुरा लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते चुराने के क्या क्या साधन इनके पास थे, साधन का वर्णन है। श्री कृष्ण का सौंदर्य क्या क्या, एक तो आंख तो अरविंद है, अरविंद लोचन कमल नयन, भगवान का नाम ही है कमल नयन। केवल कमल नयन कह दिया जाए तो इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, अद्भुत आंखें हैं। तो आंखों से ये देख रहे थे, उनकी आंखों को देखी मथुरा नगर में, और श्री कृष्ण प्रगल्भ लीला हसिता अवलोकन, श्री कृष्ण उनके मन को कैसे चुरा ले, चुरा लेने का मतलब उनका मन उनके पास अब बिल्कुल पहले से ही नहीं था, जो भी थोड़ा मन था वो ले लिए, चुरा लिए पूरा निशेष, जहारा जहारा मैंने हर लिए, अपहरण कर लिए। प्रगल्भ लीला हसता लोक में, प्रगल्भ का अर्थ होता है दक्ष निपुण, लीला लीला पूर्वक ही लीला करते हुए जब श्री कृष्ण देखते हैं तो उनका देखना ही एक लीला में होता है, आनंद में। तो दक्ष लीला पूर्वक हास्य और अवलोकनों से, हंसी से और अवलोकन से, जब वो मथुरा की स्त्रियां उनके तरफ देख रही थी तो भगवान भी देख करके और मुस्कुरा रहे हैं और उनको देख रहे हैं, और लीला पूर्वक अपनी भावों का संचालन करके मटकी से इशारा करके देख रहे हैं, और ये मतलब सूचना दे रहे हैं कि हाँ हाँ मैं भी देख रहा हूं, आप देख रहे हैं तो मैं भी देख रहा हूं। तो जैसे वे आविष्ट है कृष्ण को देखने में, तो कृष्ण भी अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे थे अपने नजर द्वारा, अपने मुस्कान द्वारा। कोई स्त्री देख रही है उसको देख करके मुस्कुराना और तिरछी चित्रों से देखना, इशारा करके देखना, इनके द्वारा और श्री कृष्ण के परम सुंदर श्री विग्रह को देख करके, श्री कृष्ण की गति को देख करके, चाल को देख करके, इनका मन अपने बस में नहीं रह गया और श्री कृष्ण ने उनके मन को चुरा लिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण चुराए, पहले थोड़ा कम, बहुत कम दान दिए और चुराए ज्यादा, एक बार इशारा किए केवल, एक बार इशारा करके देख लिए, मुस्कुरा दिए, तो मूल्य इतना कम दिए और मन रूपी रत्न पूरा हार दिए, चुरा दिए। ये चोरी ही कही जाएगी, तो कोई दान देना नहीं हुआ। दान देना तब होता जबकि निरंतर ही साथ रहते, मुस्कुराते रहते, ठीक है पूरा दान देते, लेकिन इतना सुंदर मन मथुरा के स्त्रियों का, एक बार इशारा करके और एक बार चाल, मस्त चाल से चल करके। इसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, एक तो आंख कमल नयन है, कमल के समान सुंदर एक विशेषता, और दूसरा प्रगल्भ लीला, प्रगल्भ लीला हस्ता प्रगल्भा या लीला ताभी हसितानी इक्षणानी तय, हंसी द्वारा, दृष्टिपात द्वारा और लीला पूर्वक अवलोकन द्वारा, और श्री रमणात्मना श्रीयम रमयति इति श्री रमण तेन आत्मना बपुषा, जो श्री विग्रह भगवान का श्री को भी रमाता है, लक्ष्मी जी को या राधा रानी को, उस श्री विग्रह के द्वारा तासम दृशम नेत्राणाम उत्सवम दद, उनके नेत्रों को दिए, क्या दिए, उत्सव, उत्सव का अर्थ परम आनंद, उनकी आंखों को परम आनंद दिए, क्या क्या चीज से दिए, श्री रमण बपु से, कमल नयन से, हंसी से, अवलोकन से, प्रगल्भ लीला से, और दूरदेन्द्र विक्रम मतवाले हाथी की चाल से। चाल भी श्री कृष्ण की ऐसी है कि जो देख ले तो ऐसा फंस जाएगा कि चाल से उबर नहीं सकता है, तो वही देखना चाहेगा। तो इस तरह से चलते हैं, थिरकते हुए, नाचते हुए, तो दूरदेन्द्र विक्रम, खासकर मथुरा में जब चल रहे हैं तो मस्त हाथी की चाल चल रहे हैं, शत्रु के नगर में है लेकिन श्री कृष्ण को कोई भय नहीं है, मस्त गति से चल रहे हैं। इसके द्वारा, हंसी द्वारा, चितवन द्वारा और श्री रमण आत्मा द्वारा, श्री देह द्वारा, उनके मन को जहार पूरा पूरा हर लिया, अर्थात उनका मन चाल में फंसा था, हंसी में फंसा था, नेत्र में, श्री विग्रह में, उनकी लीलाओं में सहज हर लिया। अरविंद लोचना इति परम सहज परम सौंदर्य उत्तम, अरविंद लोचन कह करके सिर्फ सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के सहज परम सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, और उसका स्वाभाविकत्व है, परंतु फिर भी विशेष मनोहर उनकी मनोहरता को व्यक्त करने के लिए अनेक साधन कर रहे हैं। इदम मनोहरण साधनम आद्यम, पहला साधन क्या है किसी के मन को हरने में श्री कृष्ण के पास? नेत्र। नेत्र इतने सुंदर हैं और मुख इतना सुंदर है कि उसको देख करके मन अब कहीं रह ही नहीं सकता है। मन हरने का पहला साधन यह है, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मनांसि तासाम अरविंद लोचन, पहला साधन। और दूसरा साधन है प्रगल्भेति, प्रगल्भा प्रौढ़ा तासाम मनोहरण समर्था या लीला। और लीला, लीला क्या है? भ्रू नर्तन, आंखों का इशारा, भौहें मटकाना देख करके। इसका अर्थ होता है कि संकुचित आंखों को निकोच करके और इशारा करना, कि किसी स्त्री को इस तरह से देख करके श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं कि उसका मन कैसे उसके वश में रह सकता है। कि इसको प्रौढ़ है लीला कहते हैं, लीला। और इसके बाद हंसित, हंसना और अवलोकन। एक बार नहीं, अनेक आवृत्ति हो रही है, अवलोकन ही, हंसित ही, बार बार हंसना और बार बार देखना। ध्यान रखना चाहिए कि परम पुरुष श्री भगवान की लीला है, ये परम दिव्य है, कोई प्राकृतिक धरातल की चीज नहीं है, ये अद्भुत है। वास्तव में भक्त जन ही इसको समझ सकते हैं, इसका आस्वादन कर सकते हैं। भगवान का इशारा करना, देखना, हंसना मथुरा के स्त्रियों पर, ये सब साधन बताया जा रहा है। और साधन है मत गजेंद्रवाद, गजेंद्रात गजेंद्रात अपि विक्रम पराक्रम विशिष्ट क्रम गति जस्य इति। ये क्यों मन को हरण कर रहा है? गति तेज नहीं है, हाथी मस्त चलता है, तो इनका मनोहरण करने में पूरा पूरा इनका संकल्प भी है, मन को हर लेना है, अर्थात अपने सौंदर्य को व्यक्त कर रहे, तो धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी पार कर जाए। इनको पूरा पूरा आनंद दे रहे हैं अपनी गति द्वारा, अपने मुस्कान द्वारा, चितवन द्वारा, इस तरह से मनांसिता साम अरविंद लोचन, अरविंद लोचन उनके मन को जहारा फर ली, अर्थात पूर्णतः मन उनमें आविष्ट हो गया। न अपने परिवार का ध्यान था, न देह का ध्यान था, न और किसी का ध्यान नहीं, संसार का बिल्कुल ध्यान नहीं था, केवल श्री कृष्ण के मुस्कान में, अवलोकन में, उनके श्री रमण बपु में, सुंदर शरीर में, चाल में, प्रगल्भ लीला में ही लगा हुआ है। इसको कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की मन को हर लिया भगवान। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। दी एवं के निदृशा महोत्सव, उनकी आंखों को महा उत्सव दिए, लेकिन रत्न हर लिए, मनोरत्न। जब मन हर लिए तब वे क्या कर रही हैं? दृष्ट्वा मुहुः सुत मनो दूत चेतसस्तम तत्प्रेक्षणस्मित सुधोक्षण लब्धमानः आनंद मूर्तिमुपगुह्य दृशात्म लब्धम हृष्यत् प्रचो जहुरनंतमरिन्दमाधि। श्रील सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संबोधन करते हैं, अरिंदमा, हे शत्रुओं को जीत लेने वाले परीक्षित। यह शत्रु शब्द का अर्थ है हे निर्जित काम, शत्रु को तुम जीत लिए हो, हे निर्जित काम, तुम काम वासना को बिल्कुल जीत लिए हो, काम के वश में नहीं है। या भक्ति विघ्न जो भी है वही सबसे बड़ा शत्रु है, तो उसको तुमने जीत लिया है। श्री मथुरा नगरियां मुहुः श्रुतम, युह का अर्थ बारम्बार बहुत काल तक श्रुतम श्री कृष्ण के विषय में सुनी थी, सुनती रहती थी। ये प्रश्न यहां उठेगा कि अकस्मात श्री कृष्ण में इस तरह का अनुराग कैसे हो गया, तो उसका तो उत्तर है कि भगवान के स्वरूप में वह जादू है कि कोई भी देखे उसमें प्रेम उत्पन्न हो ही जाता है, वो चाहे मनुष्य हो, देवता हो, यहां तक कि पशु पक्षी भी हो, कीट पतंग भी, तो उसमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है श्री कृष्ण को देख करके, उनकी बांसुरी को सुन करके, ये उनका सहज प्रभाव है। लेकिन एक और बात कह रहे हैं कि मुहु श्रुतम मथुरा की रमणिया बारंबार बहुत काल से श्री कृष्ण के विषय में सुनी है। मुहु श्रुतम, मुहु का से बारम्बार सिद्ध समझिए आपको, बारम्बार सुनी है, बारंबार सुनने का प्रभाव होता है तब मन कृष्ण में आविष्ट होता है। ऐसा नहीं सुने तो एक बार हो गया, दो बार हुए, और कितना सुने, केवल वही काम छोड़े हैं, और क्या काम है और क्या काम है, जब खाने पीने का काम चल रहा हो तो और क्या क्या बटोर कर करेंगे, इकट्ठा करके सब ले जाएंगे क्या, ये तो काम चलाने के लिए, जीने के लिए, और जी करके करें क्या, जी जीवन से तत्व तो जिज्ञासा, तत्व तो भगवान परमात्मा और ब्रह्म है, ये तत्व तो इसी को कहते हैं, तो तत्व को कैसे अनुभव करेंगे, तो छद्म धाना मुनि ज्ञान वैराग्य दुत्या पश्चिन्तात्मन इच्छात्मन भक्त्या श्रुत गृहीत, उस परम तत्व को, असली चीज को, श्री भगवान को श्रुत गृहीतया भक्त्या श्रवण के द्वारा प्राप्त की गई भक्ति से, प्रेम से उसको आत्मा में पश्यन्ति, मन में देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, यही है तत्व का अनुभव करना, यही है तत्व ज्ञान और यही है ब्रह्म ज्ञान। ये नहीं ब्रह्म ज्ञान का मतलब है आंख बंद करो और झूठा कुछ सोचा करो ये ब्रह्म और ये सब, ब्रह्म का अर्थ कृष्ण को देखना, कृष्ण ही पर ब्रह्म है, जिस तरह मथुरा की नारियां देख रही हैं उनको और मन में स्मरण कर रही हैं। बहुत काल से बारंबार श्री कृष्ण कथा इन्होंने सुना था, इस कारण से मुहु बारंबार श्रुतम कृष्ण रूप सौंदर्यम श्रुतम, कृष्ण के रूप सौंदर्य लीला को इन्होंने सुना था, श्रुतत्व देव और सुनने के कारण ही अनुद्रुत चित्त से, इनका चित्त पहले से ही श्री कृष्ण में बह रहा था, चिंतन हो रहा था, बारंबार बह रहा था अनुद्रुत चित्त से, श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप लीला आदि को देखने की इनको लालसा हो रही थी, सुनने के कारण कृष्ण के दर्शन से पहले ही इनका चित्त धावित था कृष्ण में, अनुद्रुत चेत स अनुद्रुतम देगेन पश्चम संलग्नम चेत जसंता, श्री कृष्ण के पीछे लग गया था चित्त मथुरा के स्त्रियों का, कि अनुद्रुतम निरंतरम प्रेमणा द्रवीभूतम, यह चित्त पिघला रहता था इनका हमेशा, परस्पर कृष्ण की चर्चा करके, कृष्ण के बारे में सुन करके इनका चित्त पिघला रहता था, कृष्ण से मिलने की लालसा उत्सुकता बनी रहती थी। तो ऐसी स्त्रियां आज भगवान को देख रही हैं, जिनके बारे में सुनी है, तम दृष्टवा ऐसे प्रियतम श्री कृष्ण को देख करके, तत्प्रेक्षण सुधस्मित सुधो तत्प्रेक्षण सुस्मित सुधोक्षण लब्धमा, एक तो ये देख रहे हैं कृष्ण को, और कृष्ण अपने उत्स्मित उत्कृष्ट मुस्कान और प्रईक्षण हंस करके श्री कृष्ण इन पर देखते थे, तो इसको श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अमृत, भगवान जिस पर देख रहे हैं और वो भी मुस्कुरा करके देख रहे हैं, श्री कृष्ण का मुस्काना और देखना यही है अमृत, इस अमृत से सिक्त हुई जो वर्षों से श्री कृष्ण विरह में तप्त थे श्री कृष्ण को देखने के बाद, श्री कृष्ण के मुस्कान और दृष्टिपात से मानो सींच दी गई उस अमृत से, सुधोक्षण सुधा से उक्षण हो रहा था, सिक्त हो गई है लब्ध माना, और यही था कृष्ण के द्वारा मान प्राप्त होना, उनका मान श्री कृष्ण ने किया, भगवान ने उन्हें एक प्रकार से स्वीकार किया, उनका प्रेम स्वीकार किया अपनी दृष्टि से देख करके। श्री कृष्ण के दृष्टिपात में, दृष्टिपात ही असली अमृत है, और मुस्कुरा करके देखना, अद्भुत शब्द का प्रयोग है भागवत में। इसीलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, स्थाने स्थाने भागवते करी अच्छे वर्णन तहा सुख व्यासे रनंदन। स्थान स्थान पर सुखदेव गोस्वामी ने इस माधुर्य का वर्णन किया है, जहां सुनी माते भक्त मान, जिसको सुन करके इन भक्तों का मन मतवाला हो जाता है। ये श्री कृष्ण को देख रहे हैं, श्री कृष्ण उनको देख रहे हैं अपनी आसक्ति व्यक्त करते हुए, तो वह उनके लिए अमृत है, अमृत से सिक्त की जा रही है, भगवान की दृष्टि के अमृत से और अवलोकनामृत से। उस समय ये क्या थी, ऐसे सुखी होकर के दृशा अपने दृष्टि के पद से अगर ये चोरी किए हैं मन को, तो उनको दृष्टि से देख करके इस हृदय रूपी कारागृह में बंद कर दिए। यही बहुत बिल्कुल प्रौढ़ स्त्रियां हैं, सिरकी से इतना चोरी की मन को हर लिए, तो इन्होंने क्या कि दृशा दृष्टि से श्री कृष्ण को लिया, द्वार भूत से देख करके और मन आंखें बंद करके हृदय में ले लिया कृष्ण। कृष्ण जा रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे पथ पर, लेकिन अब तो चले जाएंगे, इसलिए आंख से देखा और देख करके मन ही मन उनका आलिंगन करने लगे। बाहर तो आलिंगन कर नहीं सकते थे, समाज था, जा ही नहीं सकते थे, कोई स्त्री मथुरा में जाकर कृष्ण का आलिंगन करे ऐसा संभव नहीं था, ब्रज में तो संभव था, क्योंकि वन जंगल है, कहीं कुंज में कहीं जमुना के तट पर कोई भी ऐसा कर सकता था, लेकिन द्वारका मथुरा जी, ये तो सभ्य जादुओं का क्षत्रियों का नगर है, वहां ऐसा होने पर हल्ला एक दिन हो जाता कि अरे कृष्ण इस तरह से किसी से व्यवहार करते, वहां तो जा नहीं सकते थे, लेकिन दृशा नेत्रों के द्वार से कृष्ण को मन में लेकर के और आलिंगन का की। किसका आलिंगन की? आनंद मूर्ति, जो परमानंद घन विग्रह है, जो आनंद की मूर्ति है, उन भगवान को लेकर के खूब आलिंगन किया, आलिंगन किया, चुंबन किया, सब किया, मन में कर रहे तो कौन देखेगा, और निसंकोच करने वाली, सब सबके बारे में वर्णन कर रहे, जा रहे दूर तो ठीक है जाइए, लेकिन हृदय से कैसे दूर चले जाएंगे। तो और हे अरिंदमा, हे शत्रुजीत परीक्षित, दुरंत आदि, जो दुरंत मनोव्यथा थी, कृष्ण से नहीं मिलने का जो दुख था, उसको जहु त्याग दी, मतलब दुख सब समाप्त हो गया। आनंद मूर्ति भगवान का हृदय में आलिंगन करके और सब दुख बिसर गया। ऐसा अनुभव नहीं रहा कि नहीं मिले, आज आंखों के सामने आए और आंखों के बाद हृदय में बंद करके उनका आलिंगन करने लगे। इस तरह सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, आनंद मूर्ति अनंतम, आधि माने मनोव्यथा, व्याधि माने शरीर शारीरिक दुख, व्याधि कहते हैं फोड़ा फुंसी बुखार आदि को, ये सब व्याधि, और आधि मतलब मन में जो दुख होता है, चिंता। हमने सुना है गुजरात के लोग कहते क्या आधी किए हो मन में, क्या आधी, सोचते चिंता मत करो, आधी मत करो, तो आधी व्याधि सुने हैं ना, व्याधि जो व्यक्त आधी है, व्यक्त आधी मतलब बुखार सर्दी फोड़ा फुंसी ये सब व्यक्त आधी, और मन में जो अव्यक्त चिंता है उसको आधी कहते हैं। बहुत काल से जो श्री कृष्ण के अमिलन का दुख था, वो ब्रज की मथुरापुर की स्त्रियों का वो शोक दूर हो गया भगवान का आलिंगन करके, वहां कोई क्या करेगा, इसके द्वारा मथुरा की नगरियों का भाव व्यक्त हो रहा है, श्री कृष्ण के हृदय में पकड़ करके आलिंगन कर रहे हैं, उनका भाव यही है कि श्री कृष्ण हमारे प्रियतम, भले समाज में व्यक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन यही भाव, और भगवान उनके भाव का अभिनंदन किया। इसके बाद और ऊपर चढ़ गए, प्रसाद शिखरा रूढ़ा, प्रतिफुल्ल मुखामुजा, प्रसन्नता से खुशी से इनका मुख कमल खिल गया स्त्रियों का, और फूलों की वर्षा करने लगी कृष्ण पर। सौमनस्य अभ्यवर्षण, सौमनस्य, सौमनस्य का मतलब होता है सुमन, सुमन का भाव, फूल बरसा रही थी, और सौमनस्य का अर्थ अपना सुंदर भाव बरसा रही थी, मन का जो सुंदर भाव है उसको भी सौमनस्य कहते हैं। तो फूल क्या बरसा रहे थे, अपना मन बरसा रहे थे, फूल की वर्षा करने लगे श्री कृष्ण पर। प्रमदा बल केशव, ये प्रमदा है मथुरा के, नवज्योति स्त्रिया सब श्री कृष्ण और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। ये तो स्त्रियों की दशा का वर्णन किए, अब ब्राह्मणों के द्वारा जो हो रहा था उसका वर्णन करते हैं। ब्राह्मण मथुरा के जहां तहां मंगल की सामग्री लेकर के, दधि अक्षत, दही और अक्षत लेकर के, शुद्ध पात्र जल से भरा हुआ बर्तन लेकर के, तथा स्रग मालाएं, सुगंध और अनेक प्रकार के उपहार, मिठाई और क्या क्या दे करके दोनों भाइयों का अर्चन करने लगे। मतलब मंगल ध्वनि कर रहे, वेदों से मंगलम भवतु, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वज, गरुण ध्वज तुम्हारा मंगल करें, भगवान नारायण मंगल करें, यही मूल नारायण है। लेकिन ब्राह्मण बड़े स्नेह से आशीर्वाद दे रहे थे श्री कृष्ण भगवान को, और भेंट की सामग्री भी दे रहे थे, सब गंधई चंदन लगा रहे थे जहां तहां, और अनेक प्रकार के चंदन का लेप लगा रहे थे, और अक्षत से चावल जो टूटा हुआ नहीं था उससे आशीर्वाद दे रहे थे, स्वस्ति वाचन कर रहे थे, और मालाएं अर्पण कर रहे थे, धूप दीप दे रहे थे, अभ्युपाय में मिष्टान आदि में, फल आदि में, कोई कोई मिष्टान ला रहे थे ब्राह्मण, कोई फल ला रहे थे, सभी लोग सम्मान कर रहे थे। अब धनी लोगों के द्वारा किए हुए सम्मान का वर्णन भी है इसमें, खास करके वैश्यों की स्त्रियां भगवान को किस तरह से सम्मानित कर रही हैं इसका वर्णन आगे आएगा। ये ब्राह्मणों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि मालाओं से, फूल से, चंदन के लेप से, धूप से, गंध से अर्चन कर रहे थे, स्वस्ति वाचन आदि कर रहे थे, एवं स्त्री पुरुषाणाम सर्वेशां प्रमोदम उक्त्वा तत्र च प्रायो रूप दर्शन दर्शनमेव कारणम इति बोध्यं तन्महात्म्यं तात्पर्य उच्चुरीति। तो इतने ब्राह्मण भगवान का सम्मान कर रहे थे, सब आकर्षित थे, स्त्री हो पुरुष हो कोई हो, तो मुख्य कारण था रूप दर्शन, श्री कृष्ण को देख करके सब उनके प्रति न्योछावर हो रहे थे। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मथुरापुर के जो लोग अथवा लुगाई समझिए हैं, मथुरापुर की स्त्रियां आपस में एक बात बोल रही थी, उस बात का केंद्र था, वे कहती हैं ऊंचु पौरा अहो गोप्य स्तम की नचरण महत या हेतावनुपश्यंती नरलोक महोत्सव। अहो गोपियों का कितना बड़ा भाग्य है जो इन दोनों पुरुषों को निरंतर देखती रहती हैं, उन्होंने क्या महत तप आचरण, कौन सा सुकृत किया था गोपियों ने, ये देखती रहती हैं। इसका अर्थ है कि मथुरा की स्त्रियां ये सोच रही हैं कि ये तो केवल एक दिन के लिए यहां आए हैं, फिर अपने घर चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, ब्रज में चले जाएंगे, अगर वहीं जन्म हुआ होता, अगर ब्रज में जन्म हुआ होता तो इनको हम निरंतर देखते, आखिर ये शहर घूम करके एक दो दिन में चले जाएंगे। गोपियों ने क्या तप किया था, इस वाक्य से श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि पौरा का अर्थ है पूर्वाश्री स्त्रियां, क्योंकि गोपियों की वे चर्चा कर रही हैं, अगर पुरुष चर्चा किए होंगे तो दूसरे 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 कारण भी रखते हैं, दूसरे की भी चर्चा करते हैं, लेकिन स्त्रियों गोपियों की ही चर्चा हो रही थी। अहो गोप्य, अहो गोपियों ने कौन सुकृत किया, कौन पुण्य किया, कौन दान दिया, जो निरंतर इन दोनों पुरुषों को देखा करती है, कृष्ण बलराम को देखा करती है, कौन तप किया। तो अगर पता लग जाए कि वो इस तप को करने से कृष्ण बलराम मिलेंगे, तो हम भी वही तप करती हैं। पता लगाओ कि कौन तप किया था, तो किसी ज्योतिषी से पूछो कई कई जन्मों में गोपियों ने क्या तप किया। निरंतर देख या हेतावनी पश्चिंती मरलोक महोत्सव, जो मनुष्य लोक के लिए जीव मात्र के लिए जो उत्सव है या उत्सव देने वाले हैं, महान सुख देने वाले हैं, कृष्ण बलराम को देखती रहती हैं गोपियों ने क्या तप किया। भागवत में अनेक जगह पर चर्चा है कि गोपियों ने कौन सा तप किया था, और गोपियां बांसुरी के तप की खोज में हैं, इस वेणु ने कौन तप किया था। अगर हम भी वो तप करती तो श्री कृष्ण का अधरा मृत लेती, कृष्ण के हस्त कमल का संजोग मिलता, मर रही। सारा जगत प्रशंसा कर रहा है गोपियों की, पर गोपियां बाल सखाओं की प्रशंसा करती हैं, बेणु की प्रशंसा करती हैं, गोवर्धन जी की प्रशंसा करती हैं, पर तब तो गोपियों का प्रेम ही और सब जगह दिखाई पड़ रहा है। सबसे अधिक भाग्यवती, सबसे श्रेष्ठ श्री गोपी जन है। तो श्री कृष्ण बलराम मथुरा में आए हैं,